देवियों सज्जनों, आप सबको नमस्ते। गीता के चैप्टर 18 की चर्चा हम कर रहे थे। लास्ट टाइम हमने डिस्कस कर रहे थे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आदि जो चार वर्ण हैं, वो अपने इनहेरेंट टेम्परामेंट नेचर और जो भी उनका वोकेशनल टैलेंट है उसके बेस पर बनाए गए थे, और क्या क्या क्वालिटीज होने पर क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं जिससे पता लगता है कोई ब्राह्मण है, क्षत्रिय है या वैश्य है या शूद्र है। ये जो चार क्लासेस हैं ये बहुत ही नेचुरल डिवीजन है सोसाइटी का। वो किसी भी सोसाइटी हो, किसी भी देश का, किसी भी कॉन्टिनेंट का, किसी भी सोसाइटी का हो, आपको इस चार तरह के लोग आपको बाई नेचर मिलते ही मिलते हैं। उनमें से लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था ब्राह्मणों के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या होने पर पता लगेगा कि कोई ब्राह्मण है। आज रेस्ट अब तीन वर्णों की चर्चा करेंगे। मेरे साथ मिलकर बोलिए, शौर्यम तेजो धृतेर दाक्ष्यम युद्धे चाप्यपलायनम दानम ईश्वर भावश्च क्षात्रम कर्म स्वभावजम। जिसमें नेचुरली वो शौर्य हो, वो करेज हो किसी भी चैलेंज को एक्सेप्ट करने का, किसी भी लिमिटेशन तक जाकर किसी को सेव करने का, किसी को सिक्योर करने का हो। बहुत सारे हमारे लाइफ में इंसिडेंट्स होते हैं, कहीं आग लग गया है, कहीं फ्लड आ गया है, हमें लगता है कि कुछ कोई फंसा हुआ है उसको बचाना चाहिए। हम बड़े खूबी बहुत कोशिश करते हैं, पैशनेट है, पर हम कर नहीं पाते हैं क्योंकि उस फ्लड वाले पानी में कौन कूदे, आग में कौन कूदे उस बच्चे को बचाने के लिए, और हमारे में से कोई कूद पड़ता है। इसीलिए नहीं कि वो बहुत स्ट्रांग है फिजिकली, इसीलिए कि वो मेंटली बहुत स्ट्रांग है, उसमें वो करेज होता है। ये जो करेज होना यही है शूरता, और जिसमें वो दिखे वो पहला कैरेक्टर है कि वो क्षत्रिय का सिंबल है। दूसरा कहा तेज, जिसमें वो ग्लोरी हो, पावर हो, धृति फार्मनेस हो, किसी भी चीज को पाने की जो ठान लेने की जो जिद्दी है, डिटर्मिनेशन है, वो उसमें ज्यादा हो। दाक्ष्यम स्किल हो, और युद्धे चापि पलायनम, अगर कहीं लड़ाई हो रही हो, लड़ाई करनी पड़े तो फिर बीच में छोड़ के भागे नहीं, भागता ना हो। दानम चैरिटी, लोगों को हेल्प करता हो दिल खोल करके। ईश्वर भावश्च, रूल करने की टेंडेंसी हो, डोमिनेटिंग नेचर हो, दूसरों पर रूल करने का भाव हो, अगर ये सब टेम्परामेंट किसी में दिखता हो तो वो क्षत्रिय कहलाता है या होता है। ये सारे क्षत्रिय के स्वभावज कर्म होते हैं, वो सब एक्टिविटीज जो कि बाय नेचर उसमें आता है, स्वभाव से पैदा होता है। तो शूरता, ध्यान रखिए, क्षत्रिय में फिजिकली बहुत स्ट्रांग होना है ये जरूरी नहीं है। आप फिजिकली बड़े कमजोर हो सकते हैं, आप फाइनेंशियली भी बहुत पुअर हो सकते हैं, पर आप में वो करेज होता है वो काम करने के लिए जो बहुत बड़े बड़े पावरफुल लोग करने के लिए झिझकते हैं। अभी आप सबने सुना देखा होगा थाईलैंड में कुछ 13 बच्चे फुटबॉल खिलाड़ी किसी गुफा में फंस गए थे। 2.5-3 माइल की गुफा है, बड़ी संकरी है, फ्लड पानी से भरा हुआ है, 13-14 दिन से फंसे पड़े रहे थे। लाखों लोग इकट्ठा हुए, मीडिया वाले, पुलिस वाले, सब तरह से, पर हर कोई अंदर जाके बचा नहीं पाया। डाइवर्स भी होते हैं, बाकी लोग ट्रेंड लोग भी होते हैं, क्योंकि वो इतना मुश्किल काम है, वो कोई करेज दिखाए जो वहां तक जाए, खुद पहुंचे 4 किलोमीटर या 2.5 माइल तक उस पतली गुफा के अंदर से, फ्लड के पानी में भरा हुआ, जहां ऑक्सीजन नहीं है, अंधेरा ही अंधेरा है। और ये कोई 100 मीटर, 200 मीटर, 500 मीटर की बात नहीं, 2.5 माइल दूरी तक जाना है। और जो लोग उसको निकाल करके लाए, ऐसा नहीं है कि वो कोई बहुत पावरफुल लोग थे। यस, नेचुरली वो स्किल्ड थे, उनको ट्रेनिंग थी, पर सबसे पहली बात होती है कि उनमें शूरता होती है। शूरता मतलब किसी चीज को करने के लिए जो करेज होता है। इसी तरह तेज आप में बल हो, विद्या हो, जो भी हो, वो आपके शरीर से, मन में, शकल में वो झलकता हो। धृति, फार्मनेस, जब आप ठान लेते हैं कितनी बड़ी संकट आए, आप इसको झेलने की तैयारी तैयार रहते हैं, तो वो क्षत्रियता का निशानी होती है। महाभारत में एक बड़ा फेमस स्टोरी आप लोगों ने सुना होगा, कर्ण और परशुराम की। परशुराम को किसी सर्कमस्टांसेस के कारण उन्होंने ये प्रॉमिस किया था, मैं किसी भी क्षत्रिय को जो राजा हो, कोई रॉयल फैमिली से बिलोंग करता हो, मैं उसे युद्ध विद्या नहीं सिखाऊंगा। और परशुराम उस समय दुनिया के सबसे बड़े मास्टर थे युद्ध विद्या के। और उन्होंने ये नियम बनाया था कि मैं किसी को नहीं सिखाऊंगा, कोई भी क्षत्रिय को नहीं सिखाऊंगा, कोई ब्राह्मण आए, दूसरे वैश्य आए, शूद्र आए, पर क्षत्रिय को नहीं सिखाऊंगा। कर्ण को पता नहीं था कि वो क्षत्रिय वंश में पैदा हुआ है और उसके अंदर भी वो इनहेरेंट नेचर भी है। उसने परशुराम को जाकर के झूठ बोला कि मैं ब्राह्मण हूं और आपसे युद्ध विद्या सीखना चाहता हूं। तो ब्राह्मण जैसा व्यवहार किया तो परशुराम ने उसको एक्सेप्ट किया, शिष्य के रूप में सिखाया, ट्रेनिंग दी, बहुत कुछ सीखा। एक दिन, पहले जमाने में गुरु और शिष्य का संबंध बड़ा बाप बेटे की तरह या दो दोस्तों की तरह बहुत ही क्लोज होता था, जहां शिष्य को पूरा रेस्पेक्ट कर, शिष्य रेस्पेक्ट करता था अपना गुरु को, और गुरु पूरी तरह अपने शिष्य को प्यार करता था अपने बच्चों की तरह। तो एक दिन पेड़ के नीचे थके हारे परशुराम को नींद आई तो वो सो गए, और कर्ण के थाई पर, जंग पर अपना सर रख करके वो थोड़ी देर के लिए सो गए। इसी बीच में एक बिच्छू आया और बिच्छू ने परशुराम को काट, कर्ण के जांघ को, पैर को काटा। बड़ा विषैला जहरीला बिच्छू था, और प्रॉब्लम है कि वो काट के छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा है। अगर आप में से किसी को बिच्छू काटने का एक्सपीरियंस हो, आपको पता होगा, भारत में जनरली किसी ना किसी को काटता रहता है, मौका मिल जाता है, कितना पेनफुल होता है। कर्ण अपना पैर हिलाया नहीं दर्द के मारे, कहीं गुरुजी का नींद न टूट जाए, तो उस पेन को वो बर्दाश्त करता रहा, सहता रहा, क्योंकि मेरे हिलने से या किसी भी तरह के कोई रिएक्शन करने से, चिल्लाने से, शरीर को हिलाने से गुरुजी का नींद न खिल जाए। वो सहता रहा, और जो परशुराम की नींद खुली और उन्होंने देखा खून लथपथ है, तो उसने पूछा, कर्ण ये क्या है? कुछ ने एक बिच्छू ने काट दिया। कब काटा? ये तो काफी देर से कटा हुआ लगता है, क्योंकि इतना खून बह रहा है। जी हां, काट दिया, काफी देर हो गया। परशुराम समझ गए, कोई ब्राह्मण में इतनी पेशेंस नहीं हो सकता, शरीर और मन को धैर्य नहीं हो सकता। जिसमें ये फार्मनेस हो वो कोई क्षत्रिय ही होगा, वो ब्राह्मण हो नहीं सकता, क्योंकि ज्यादातर अज्ञानी लोग थोड़े शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं। ऋषि मुनियों की आप स्टोरी सुनेंगे, बात बात पर उनको थोड़ा गुस्सा आ जाता है। ये कोई क्षत्रिय ही होगा। और पूछा सच बताओ, बोले मुझे नहीं पता। बोले ना, ये लक्षण तो किसी भी ब्राह्मण का हो ही नहीं सकता, तूने मुझे झूठ बोला। स्टोरी आगे चली, उन्होंने उसका अभिशाप दिया। स्टोरी का मतलब है कि जो फार्मनेस से सहने की एक डिटर्मिनेशन पर बनाए रहने की जो क्षमता जिसमें दिखे वो क्षत्रिय कहलाता है। इसी तरह दाक्षम, जो भी हम काम हाथ को लेते हैं उसमें जो स्किल है, जो कुशलता है। युद्धे चापि अपाल अपलायनम, पूरी गीता की जो सार है, गीता शुरू हुई यहीं से और पूरे 7 अध्याय की चर्चा के बाद जो सार था अर्जुन को समझाने के लिए, अगर तुम समझते हो कि तुम क्षत्रिय हो, सैनिक हो, सोल्जर हो, लड़ाई के मैदान में खड़े हो, फिर भागना तुम्हारे किसी भी तरह का धर्म नहीं हो सकता। तुम्हें अगर सचमुच दया है, लोगों को मारने की इच्छा नहीं है, ये सब पहले भी बात हो सकती थी। 5 साल से 6 साल से 10 साल से ये लड़ाई की तैयारी चल रही है। ऐसा नहीं कि तुम पहले भी नहीं लड़े हो, बहुत लड़े हो, तब तुम्हारे अंदर ये फीलिंग नहीं आई। आज क्योंकि रिश्तेदार खड़े हैं सामने, तो तुम अपने रिश्तेदारी बचाने के लिए एक्सक्यूज ढूंढते रहते हो, दया का, हिंसा का एक्सक्यूज ढूंढते रहते हो। युद्ध में बीच में खड़े हो, जो भागता है, भागना नहीं होना है। वो पूरी गीता में कृष्ण गीता को जो अर्जुन को जो समझा रहे थे वो सिंपल बात यही थी। जब आप कोई चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं, अगर डट के उसके मुकाबला करते हैं, सब नहीं कर सकते, बहुत लोग शुरू से छोड़ देंगे, कुछ लोग बीच में छोड़ देंगे, कुछ लोग रिजल्ट आते आते ही छोड़ देंगे, इतने थके हारे हो जाएंगे, और जो पूरे रिजल्ट पाने तक रुका रहता है, हारे या जीते, वो क्षत्रिय होता है। दानम, क्योंकि जिसमें ईश्वर भाव होना, ईश्वर का लिटरेरी मीनिंग होता है रूलर। प्रभु को, परमात्मा को भी ईश्वर बोलते हैं, क्योंकि वो रूल करता है पूरे यूनिवर्स पर, संसार पर। राजाओं को भी ईश्वर कहते हैं, क्योंकि वो भी रूल करते हैं। तो आपके घर का जो मुखिया है वो भी आपके घर के ईश्वर होता है। ईश्वर का मतलब जो रूल करता है। और अगर जिसमें रूल करने की टेंडेंसी हो, रूल्ड होने की टेंडेंसी ना हो, वो क्षत्रिय होता है। इसके लिए जरूरी नहीं कि कोई फिजिकल स्ट्रेंथ की जरूरत है। आजकल पॉलिटिकल लीडर्स रूल करते हैं आपके देश को, जिनको टेंडेंसी है कि मुझे रूल करना है, तो वो पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करते हैं। पहले राजा हुआ करते थे, राजाओं के बच्चे या मिलिट्री में जाते थे, आर्मी में जाते थे। आज भी आप पुलिस में जा हैं, आर्मी में हैं, कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज में जुड़े हुए हैं जहां आपकी एम्बिशन है कि मुझे रूल करना है, डोमिनेट करना है, डोमिनेटेड नहीं होना है। ये सब क्षत्रिय का कर्म है, जो कि स्वभावज है, बाय नेचर होता है। इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ हिज नेचुरल टेम्परामेंट। आर्टिफिशियली बा जबरदस्ती क्रिएट किया गया नहीं है। हो सकता है कोई आर्मी में बड़ा ऑफिसर हो, पर उसमें वो नेचर ही नहीं है, उसमें लड़ने की या रूल करने की, डोमिनेट करने की कोई टेंडेंसी ही ना हो, तो वो प्रोफेशनल मजबूरी हो सकती है। कोई मजबूरी रही होगी जिसके कारण वो आर्मी ज्वाइन किया होगा, पॉलिटिक्स ज्वाइन किया होगा, पर उसमें वो टेम्परामेंट नहीं है। ये क्षत्रिय का स्वभाव होता है। वैश्य और शूद्र किसे कहेंगे? कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। वैश्य का कर्म, अगेन द बॉटम लाइन इज स्वभावज, जो नेचर से पैदा होता है, न कि कोई थोपा जाता है कि ये मेरे घर में पैदा हुआ, किसी पर्टिकुलर घर में पैदा हुआ तो वो ये कहलाएगा, ऐसा सिस्टम नहीं था। जो उसके नेचुरल टेम्परामेंट हो, जैसी उसकी टेंडेंसी हो, जिस तरह के उसके एटीट्यूड हो, उस तरह से काउंट किया जाता था ये किस क्लास में जाता है, ब्राह्मण में, क्षत्रिय में, वैश्य में, अशूद्र में। तो वैश्य कौन कहलाता, कहलाना चाहिए, जो कृषि, खेती करना, एग्रीकल्चर, गौ रक्षा, कैटलिंग करना, गाय वगैरह, डायरी फार्मिंग वगैरह, वाणिज्य, कॉमर्स। पहले जमाने में पैसा कमाने का बहुत ज्यादा डायमेंशंस, बहुत ज्यादा रास्ते नहीं होते थे, बहुत लिमिटेड सोर्सेस होते थे। या तो आप साहूकारी करो, बिजनेस करो, गाय बकरी घोड़ा वगैरह पालो या खेती करो, उससे ज्यादा कोई ऑप्शन नहीं होते थे पैसा कमाने। आजकल हजारों तरह के चीजें हैं जहां पैसा कमाया जा सकता है, बाकी लोग भी पैसा कमाते हैं, पर पैसा कमाना अपनी इनहेरेंट जो टेम्परामेंट है उसको सेटिस्फाई करते हुए घर परिवार चलाने के लिए जो कमाना, दैट्स ए डिफरेंट थिंग। और पैसा कमाना आपका टारगेट हो, दैट इज डिफरेंट थिंग। एक संगीतकार भी गाना गाता है, एक एक्टर भी एक्ट करता है, ये पॉलिटिशियन पॉलिटिक्स करता है, पर ऐसा नहीं कि वो भूखे करते हैं, उनको भी पैसा मिलता है, पर उनकी फोकस होता है पॉलिटिक्स करना, गाना गाना, एक्ट करना, जो भी जिसका भी जो भी प्रोफेशन है, पर फोकस जिसका पैसा कमाना है, अलग अलग कॉमर्स हो, बिजनेस हो, अलग अलग तरीके से, और जिसमें ये इनहेरेंट नेचर हो, वो टेंडेंसी हो, वो आर्ट हो, वो स्किल हो, वो वैश्य कहलाता था। और जिसमें ये सब क्वालिटीज नहीं है, ब्राह्मण के शमा दमा, इंद्रियों को कंट्रोल करना, मन को कंट्रोल करना, ज्ञान और विज्ञान में इंटरेस्ट रखना वगैरह वगैरह नहीं है, शौर्य नहीं है, रूल करने की टेंडेंसी नहीं है, या बिजनेस करने की या पैसा कमाने के लिए फोकस्ड नहीं है, या ऐसी कोई टैलेंट नहीं है, तो फिर वो क्या करता है? जब आपके आसपास के लोग कोई बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, हाई स्कूल तक मैक्सिमम पढ़ता है या उससे एलिमेंट्री तक पढ़ता है, उससे ज्यादा पढ़ नहीं पाता, ये जो तीनों क्लास हमने बताया, इन सबके लिए आपको ट्रेनिंग की जरूरत है, स्किल की जरूरत है। अगर आप स्किल्ड नहीं है, कोई ट्रेनिंग नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई एम्बिशन नहीं है, तो आप क्या करते हैं? नेचुरली परिचर्यात्मकम कर्म, जो सर्विस सेक्टर है, जो बाकी तीनों वर्णों के लिए, क्लास के लिए जो उनकी जो जरूरत है, आपको एयर कंडीशन लगाना है, एयर कंडीशन कोई इंजीनियर होता है, कोई मैकेनिक होता है, आप खरीदने जाना है तो आप बाजार जाएंगे, खरीद के लाएंगे, पर उसको मरम्मत करना है, जिसमें छोटी छोटी स्किल्स चाहिए, बहुत ज्यादा की जरूरत नहीं है, तो कोई मैकेनिक आता है, ये सेवा काम है। आप एक घर बनाते हैं, आपको आर्किटेक्ट की जरूरत पड़ती है, इंजीनियर की जरूरत पड़ता है, और बहुत सारे एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ता है, आप बाजार से, वो सब ब्राह्मण होंगे, अब बाजार से लाएंगे तो वो वैश्य होगा, पर उसके मेंटेनेंस के लिए जो आप करते हैं, उसको क्लीन करना होता है, उसको साफ करना होता है, कहीं छोटे मोटे खराब हो गया उसको ठीक करना होता है, वो कौन करेगा? वो जो कैटेगरी जिसमें आपको बहुत ज्यादा एम्बिशियस होने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्ञान की जरूरत नहीं है, बहुत टैलेंट की जरूरत नहीं है, आप इतने पढ़े लिखे नहीं है, इतनी समझदारी नहीं है, इतनी पावर नहीं है, इतना एम्बिशन नहीं है, तो वो परिचर्यात्मक कार्य में जो लगे रहते हैं वो शूद्र कहलाते हैं। प्राचीन काल में बच्चे जब 7-8 साल के हो जाते थे, अलग अलग एज ग्रुप अलग अलग में है, जैसे आजकल भी बच्चा सिक्स ईयर में फर्स्ट ग्रेड में जाता है, उससे पहले प्री स्कूलिंग तो होती रहती है, वो अलग बात है। आजकल तो डेढ़ दो साल से भी हम बच्चों को स्कूल में डालते हैं, क्योंकि आजकल की सोसाइटी अलग है, माँ बाप काम करते हैं, उनको स्कूल में डालना होता है, वो बहुत सारी चीजें। पर जो फॉर्मल स्कूलिंग है आपकी फर्स्ट ग्रेड से शुरू होती है और उसका एज यहाँ 6 साल के करीब है। पहले जमाने में 6 साल नहीं होती थी, 7-8 साल मानी जाती थी, 8 साल एवरेज मानी जाती थी। बच्चे जब लड़का या लड़की 7-8 साल का हो जाता था तो वो गुरुकुल जाता था, तो उसके उपनयन संस्कार होता था। और जो जिसका उपनयन हो गया, उपनयन का मतलब जिसका एडमिशन हो गया, गुरु ने जिसको पढ़ने के लिए एडमिट कर दिया, तो आजकल आप बच्चे आपके आइडेंटिटी कार्ड लगाते हैं, यूनिफॉर्म पहनते हैं, स्कूल बैग लेकर जाते हैं। पहले कहीं आने जाने की जरूरत नहीं, गुरुकुल में रहते थे पर जनेऊ पहनते थे। वो जनेऊ पहचान होता था कि यह द्विज है। द्विज का मतलब ट्वाइस बर्न, दो बार पैदा हुआ है। एक मां के पेट से जो अनपढ़ होकर पैदा होता है, इलिटरेट होकर पैदा होता है, हर बच्चा पैदा इसी इलिटरेट होता है। मनु कहते हैं जन्मना जायते शूद्र, एवरीवन इज शूद्र बाय बर्थ, क्योंकि शूद्र का मतलब जो इलिटरेट है, पढ़ा लिखा नहीं है, अनएजुकेटेड है। तो पैदा इसी हर कोई इलिटरेट होता है, फिर हम लिटरेट होते हैं, एजुकेटेड होते हैं। वो लिटरेट या एजुकेटेड होने का जो प्रोसेस है, उसकी जो स्टार्टिंग पॉइंट है, उसको हम कहते हैं उपनयन संस्कार। संस्कारा द्विज उच्यते, और जिसका वो जनेऊ संस्कार हो जाता था उसे द्विज कहा जाता था, कि इसका दोबारा जन्म हुआ। एक तो मां के पेट से इलिटरेट होकर के अब जो रियल ह्यूमन बींग होकर के पैदा होगा गुरु के कुल से, और जो द्विज नहीं है वो शूद्र होगा। शूद्र मीन्स अनएजुकेटेड, जो स्कूल गया नहीं, ना जा रहा है, ना कभी गया है। पहचान क्या, उसमें जनेऊ नहीं हुआ करता था। आजकल उल्टा हो गया, शूद्र को जनेऊ देना ही नहीं है, अब तो अपनी स्त्री को भी नहीं देते। मतलब आज नहीं देते, हजारों सालों से बंद कर रखा है। पर सिस्टम था जो अनएजुकेटेड हो गया, जिसमें अंदर बाहर कोई खास एम्बिशन नहीं है, कोई टैलेंट नहीं है, वो डे टू डे एक्टिविटीज करता रहता है, वो शूद्र है। परिचर्यात्मकम कार्यम स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिम लभते नरः स्वकर्म निरतः सिद्धिम यथा विन्दति तत्श्रुणो। व्यक्ति अपना जो भी कर्म है, जो भी उसका कर्म उसके लिए फिक्स्ड किया गया है, उसके इननेट नेचर के हिसाब से जिस तरह का कर्म उसने चुना या प्रोवाइडेड हुआ, उस कर्म में अगर वो परफेक्शन पा ले, उसी में अगर वो लगे रहे, अपने मन लगाकर काम करता रहे, ऑनेस्टी के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ, डिवोशन के साथ करता रहे, उसी में ही सिद्धि पा सकता है। स्वकर्म निरत सिद्धिम यथा विन्दति तत्श्रुणो। अर्जुन सुनो, अपने काम में भी अगर आप ऑनेस्टी के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ अगर करते रहो तो भी तुम लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हो, दोनों तरीके से, वो मैटेरियली हो या स्पिरिचुअली हो। प्रॉब्लम है कि ये भी ह्यूमन नेचर है, हम अपने कर्म से ज्यादा दूसरे के कर्म के प्रति ज्यादा अट्रैक्टेड होते हैं। मैं जो करता हूं उससे सामने वाला मेरे से ज्यादा अच्छा करता है, काश अगर मैं ना ये ना होकर के वो होता तो कितना अच्छा होता, मैं डॉक्टर ना होता, इंजीनियर होता तो कितना अच्छा होता, मुझे रात की ड्यूटी नहीं करनी पड़ती, ये नहीं कर पड़ती, काश मैं इंजीनियर नहीं होता, डॉक्टर होता तो कितना अच्छा होता, काश मैं इंजीनियर ना होकर लॉयर होता तो कितना अच्छा होता, काश मैं लॉयर ना होकर के इंजीनियर होता। तो हर व्यक्ति को लगता है दूसरा प्रोफेशन बेटर है, मेरा कम है, कोई ना कोई कम मतलब कोई खामी है, कोई प्रॉब्लम है। अगर ये भाव है तो फिर अपने काम को हम एंजॉय नहीं कर पाते हैं। जब आप किसी चीज को एंजॉय नहीं कर पाते हो तो उसमें सक्सेसफुल होना मुश्किल होता है। महाभारत में एक बड़ी सुंदर स्टोरी है, कहानी यह है कि एक ब्रह्मचारी मतलब पहले जमाने में जो स्टूडेंट होता था, आजकल के स्टूडेंट उनमें स्टूडेंट में थोड़ा फर्क तो रहता था, क्योंकि आजकल स्टूडेंट जो सिर्फ पढ़ाई लिखाई करते हैं, पहले स्टूडेंट जो फिजिकली मेंटली इंटेलेक्चुअली रेगुलेटेड भी अपने रेगुलेशंस को भी फॉलो करते थे और पढ़ाई भी करते थे, इसीलिए वो ब्रह्मचारी थे। अपने गुरुकुल में पढ़ाई पूरी करके और साधना और तपस्या करके और उसका ग्रेजुएशन हो गया, मतलब वो अच्छी तरह सक्सेसफुल हुआ। उसकी तपस्या भी बहुत प्रबल थी, मजबूत थी, और उसको इस बात का प्राइड भी था, फीलिंग भी था कि मैं बहुत अच्छा हूं। वो अपने गुरुकुल में, आजकल इसको ग्रेजुएशन कहते हैं, प्राचीन काल में समावर्तन संस्कार कहते थे, समावर्तन संस्कार करके स्नातक बन के ग्रेजुएटेड होकर के अपना घर आ रहा था। लंबी दूर जाना पड़ता है, आजकल की तरह थोड़ी गाड़ियां होती थी, पैदल जाओ, जंगल है, पहाड़ है, नदी है, समुद्र पार करके। रास्ते में एक जगह थक गया, किसी पेड़ के नीचे वो सो रहा था, तो सोया था तो पेड़ के ऊपर एक कौआ बैठा था और उसने बीट कर दिया और उसके सर पे गिरा, तो उसने नींद खुल गया, देखा कि कोई बीट है, ऊपर देखा कि एक कौआ है। ब्रह्मचारी था तो गुस्सा आया, शॉर्ट टेम्पर होते, अब इतना गुस्सा आया कि उसने गुस्से में उस कौआ को देखा और कौआ जल गया। उसको पता नहीं था कि उसमें इतना पावर है, वो तो और अपने आप को भाई बहुत अचीव करके आया हूं कि मेरी गुस्से में देखने से ही कोई जल गया। चलो बात गई और वो चलता गया। एक दो दिन के बाद किसी गांव में पहुंचा, भूख लग रहा था। प्राचीन काल में व्यवस्था थी, कोई भी किसी को कहीं भी भूख लगे, पहले रेस्टोरेंट थोड़े ही हुआ करते थे, किसी के घर में जहां आपको मन करे दरवाजा खटखटा और खाना मांगो तो खाना बड़े रेस्पेक्टफुली लोग आपको देते थे, ऐसा नहीं कि डिग्निटी देते थे और खुद को बड़ा धन्य समझते कि मेरे घर में कोई आया खाना मांगा। तो उसने भी किसी के घर ठकठकाया, खटखटाया, घर में एक महिला थी, आवाज दी, प्रतीक्षा करो, मैं अपनी पति की सेवा कर रही हूं, फिनिश करके आ जाऊंगा। उसके पति को लकवा पैरालिसिस हो गया था, बॉडी उठ नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, पड़ा हुआ था। ब्रह्मचारी ने बोला, कैसी हिम्मत हुई आपको ऐसे बोलने के लिए, आपको पता है मैं ब्राह्मण खड़ा हूं, पढ़ा लिखा ज्ञानी ब्राह्मण हूं, आप मेरा अपमान करते हो। अंदर से महिला ने बोला, मुझे मत धमकाओ कि कौआ को जला दिया तो मुझे भी जला दोगे। तो ब्रह्मचारी सोचने लगा, कमाल है, जब कौआ को मैंने जलाया वहां तो किसी ने देखा नहीं था, वो तो जंगल था, ये तो गांव की महिला है, अपने घर में बैठी है, कुछ खास होगी। तो दब गया, थोड़ा दब के बैठा रहा। थोड़ी देर के बाद महिला बाहर आई, ब्राह्मण का सत्कार किया, ब्राह्मण बेचारा दबा दब गया है, अब तो कोई हिम्मत भी नहीं है, ना जा सके ना आ सके, तो भाग जाए, पता नहीं ये इतनी पावरफुल है तो जिसको ये भी पता है तो और कुछ कर लेगी। तो बेचारा जैसा खाना दिया, जो किया, खाना पीना खाया, महिला ने पूरी तरह अतिथि को जैसे सत्कार करते सत्कार किया। करने के बाद ब्रह्मचारी ने पूछा, आपसे एक सवाल पूछूं, आपको कैसे पता चला कि मैं आते समय किसी कौवा को जला दिया था, आप तो बड़े पहुंचे हुए हो, आप क्या करते हो? मैं तो 14-15 साल गुरुकुल में इतनी पढ़ लिख के तपस्या करके साधना करके आया, पर आप तो अपने घर में हो, कुछ नहीं करते हो, आपको क्या करते हो वो मुझे सिखाओ। बोले, मैं कुछ नहीं करती हूं, मैं अपना काम करती हूं, आप मुझे परेशान कर रहे थे, मेरे पति बीमार हैं, बेड पर लेटे हुए हैं, उनको सेवा करना मेरा पहला काम है, उनको बीच में छोड़ के नहीं जा सकता था, और आप मुझे धमका रहे थे तो मुझे बोलना पड़ा। पर आपको पता कैसे चला? मुझे नहीं पता। नहीं, आप तो मेरे से भी बड़े पहुंचे हुए हो, आपको पता लग गया कैसे कौवा को मैंने जलाया, कुछ बताओ, कुछ तो सिखाओ। बोले मेरे पास कोई राज नहीं है, मैं अपना काम करती हूं जो मेरा ड्यूटी है, अगर कुछ जानना है मैं एक व्यक्ति को जानता हूं, वहां जाओ, हो सकता है वो तुम्हें कुछ ज्ञान दे दे। बोले कौन है? बोले अमुक गांव में बाहर, गांव के बाहर एक चंडाल है, चंडाल जानते हैं? वो शूद्र तो फोर्थ ग्रेड में आता है, चंडाल फिफ्थ कैटेगरी में आता है, जो श्मशान में रहता है, है? भारत में जो फ्यूनरल लैंड होता है, आज यहां की तरह इतने शानदार इतने ये नहीं होते हैं, वो श्मशान भूमि में रहते हैं, जो डेड बॉडी आता है उसको जलाने में हेल्प करते हैं, और उसके बदले उनको मिलता क्या है, उसकी जो कपड़ा पहना होता है वो कपड़े उनके होते हैं, और उस पर जो डाला गया होता है, जो भी डेड बॉडी के साथ सामान होता है वो चंडाल लेता था, और अगर कोई गाय बकरी वगैरह मरी उसको स्मशान में डाल देते थे तो उसको काट के उसकी चमड़ी निकालता था और उसको बाजार में बेचता था, वो आपके म्यूजिक जो उसमें डब्बा वगैरह वो यूज होता है ना ढोल में, उसमें बहुत सारे चीजों में चमड़े यूज होते थे, वो चंडाल का काम होता था। तो चंडाल के पास जाऊं, चंडाल इतना बड़ा ज्ञानी है, हो सकता है कोई बहुत ऊंचा हुआ चंडाल होगा, मतलब ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया क्योंकि आपको पता नहीं होगा चंडाल कौन है। महिला ने ऐसा कुछ नहीं बोला, उसने बोला कि ये चंडाल है, वहां जाओ, हो सकता है कि तुम्हें कुछ रास्ता बताए। वो तो चंडाल के पास पूछ पूछ करके पहुंचा, उसका नाम पूछ करके, देखा श्मशान भूमि के बगल में एक गंदा सा मैला सा आदमी बैठा हुआ है, बदबू आ रहा है मांसों की, फ्लेश की, क्योंकि चमड़ा काट रहा है, मरे हुए गाय बकरियों से चमड़े काट रहे हैं, काट रहा है, शरीर में बदबू आ रहा है। लोगों को पूछा कौन है चंडाल? वाला वो है, तो वो बड़ा बदबूदार जगह है, आदमी भी बड़ा बदबूदार है। वहां पहुंचा, चंडाल ने देख करके मुस्कुराया, आइए आइए ब्राह्मण जी, आपको वो अमुक गांव की महिला ने भेजा क्या? आपको कैसे पता? आपकी कोई रिश्ता है? मैं नहीं जानता हूं। आपने उस पर बड़ा रोब झाड़ा था ना कि कौवा को जला दिया था, तो उसने आपको चुप करा दिया था, उसने भेजा। कमाल है, 15-16 साल गुरुकुल में पढ़ लिख करके मेहनत करके जो सीखा उससे मेरे से भी बड़े बड़े सयाने लोग यहां बैठे हैं। कोई घर में घरेलू महिला बैठी है मेरे से ज्यादा समझदार है, ज्यादा उसमें पावर है। ये चंडाल, इसको देखते ही घीन आता है, समाज में कोई स्थान नहीं है। वो चंडाल के पैर में गिर गया, बोला मुझे अपनी सामर्थ्य, मोटी भाषा में कहें औकात पता लगी, कितना छोटा हूं मैं, कितना अकड़ता था, कुछ ज्ञान दीजिए। चंडाल ने बोला मेरे पास कोई ज्ञान नहीं है, मैं अपने काम ईमानदारी से करता हूं, जो मेरा मेरे लिए जो काम है तो वो मैं करता हूं, जो खानदानी मुझे करते आ रहा हूं, और कुछ नहीं किया है। देवियों सज्जनों, स्वकर्मा विरत सिद्धिम, स्वकर्मा निरत सिद्धिम यथा विन्दति। अपने कर्मों में अगर आप टिके रहकर भी उस सिद्धि को पा सकते हैं, अगर आपका इंटरनल और एक्सटर्नल एक्टिविटीज में वो शुद्धता हो, आपके मन में, इंद्रियों में, वचन में, कर्मों में, शरीर में वो शुद्धता हो, वो भाव हो, वो भक्ति हो, वो श्रद्धा हो, वो ज्ञान हो, आपको जो भी कर्म आपको करना पड़ता है आप प्रोफेशन के रूप में, उसी कर्म के ऑनेस्टी के साथ करते हुए भी, हार्ड वर्क करते हुए भी आप वही स्थान पा सकते हैं जिस स्थान को पाने के लिए लोग इससे ज्यादा कठिन रास्ता अपनाते हैं। इसलिए अपने कर्म पर को ईमानदारी से करना, कोई भी आत्मज्ञान के लिए आपको दुनिया छोड़ के जंगल भागने की जरूरत नहीं है, घर छोड़ के आश्रम बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आप में वो डिटर्मिनेशन है, आप जैसे भी हैं, जहां भी हैं, वो चंडाल के तरह किसी मरे हुए गाय के चमड़े का काम करके या उस महिला के तरह अपने बीमार पति की सेवा करते हुए भी, आप किसी ऑफिस में काम करते हुए भी, किसी दुकान में सामान बेचते हुए भी, किसी मंदिर में पूजा पाठ करते हुए भी आप उस सिद्धि को पा सकते हैं, अगर आप उस तरह के क्वालिटीज नेचर को आप कल्टीवेट करते हैं या फॉलो करते हैं। अगला एक श्लोक लेते हैं। यतः प्रवृतिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततम् स्वकर्मणा तमाभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। जहां से प्रवृत्ति, सारे प्राणियों की प्रवृत्ति, ये जो नेचर या जो इनहेरेंट टेम्परामेंट, जहां से ये सब चीजें फैला हुआ है, जिसने ये सारे दुनिया में ये सब फैला हुआ है, वो जो परमेश्वर है, जो हमारे फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल हर वो स्ट्रक्चर को जो कंट्रोल करता है, रैंडमली नहीं, अपनी मर्जी से नहीं, जो सिस्टम उसने ही एस्टैब्लिश किया है, वो लॉ ऑफ कर्म हो, लॉ ऑफ नेचर हो, उसके आधार पर जो उसने सारे संसार को कंट्रोल करता है, उस परमात्मा को तम, उस परमात्मा को तुम अपने कर्म से भी पूज सकते हो। कर्म से जो कुछ भी करते हो, तुम बैकयार्ड में पौधा लगाते हो, घर में खाना बनाते हो, ऑफिस में काम करते हो, कुछ भी करते हो, उस कर्म के द्वारा भी तुम उसको पूज सकते हो। अगर तुम्हारा इस तरह की कोई अंदर का एटीट्यूड हो, ये सब कुछ ईश्वर का है, मैं उसका निमित्त मात्र हूं, जो कुछ हो रहा है उसी का है, जो कुछ है वो भी उसी का है, मेरे पास जो है वो उसी का है, जब आप सब चीज में उसको देखते हैं, जब हम हर चीज उसी को सौंपते हैं, हर चीज में उसी को देखते हैं, हर चीज उसी को सौंपते हैं, अपने आप को उसी में सरेंडर करते हैं, तो फिर हमारा हर वो काम हम पेट पालने के लिए करें या किसी के लिए भी करें, उसको पूजा हो जाती है। और अगर मन में वो दृढ़ता नहीं है, वो मजबूती नहीं है ईश्वर के प्रति श्रद्धा का, वो भक्ति का, वो ज्ञान नहीं है कि ईश्वर सब जगह व्याप्त है, अगर वो रियलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, और हम किसी को भी पूजें, कैसे भी पूजें, कितने बड़े आकार में पूजें, कितने छोटे आकार में पूजें, कितनी लंबी प्रार्थना करके पूजें, कितनी छोटी प्रार्थना करें, सारे वेद शास्त्र सबको याद कर ले, तो भी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि ये सब इंटरनल चीजें हैं। तो हम कोई भी काम करके उस काम के ईश्वर को खुश करने की जरूरत नहीं है, वो कोई दुखी नहीं है, परेशान नहीं है, कोई सैड नहीं है, उसका कोई फ्रस्ट्रेशन उसको नहीं है कि उसकी कोई बीबी बीमार पड़ गई है, उसका ऑफिस में नौकरी चला गया है, कि हम जाए कंसोल करें, थोड़ा तारीफ कर दें, गुस्से में बैठा है तो आप थोड़ा उसको प्रेज करें, आप महान हो, विशाल हो, सूरज चांद तुमने बनाया, खुश हो जाएगा। हमारी सारी पूजा, उपासना, स्तुति, प्रार्थना, सब कुछ ईश्वर को खुश करने के लिए नहीं है, अपने मन को उसके प्रति जोड़ने के लिए होता है। वो तो तुम्हारे अंदर भी है, बाहर भी है, सब जगह है, वो तो कण कण में है, उसकी किसी चीज की जरूरत नहीं, जो तुम्हें बनाया उसकी तुम्हारी क्या जरूरत है। तो जो ये भाव आ जाएं, और जो भी काम हमें मिले, कैसा भी मिले, कहीं भी मिले, उस काम को हम बड़ी ऑनेस्टी के साथ, पूरी मेहनत के साथ करें और प्रभु की प्रसाद समझ के करें, तो कोई मतलब नहीं बनता कि आपका काम पूजा ना बने और आपको दोबारा किसी मंदिर में जाकर माथा फोड़ने की जरूरत पड़े। आज के लिए इतना है, अगले बार हम चर्चा करेंगे कि जो लोगों में एक टेंडेंसी है मेरा काम दूसरा काम ज्यादा आसान है, दूसरा काम ज्यादा बेटर है, उसके बारे में गीता में महर्षि व्यास क्या कहते हैं, अगले बार चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।